ड्रामेबाज, दादाजी आप प्लीज ये गोल गोल बातें घुमाना बंद कीजिए, मुझे सब समझ में आ जाएगा, आप साफ साफ बोलिए। अब आगे। कमरे का माहौल बोझिल था। अरमान गुस्से और उलझन में चीख उठा, कड़क आवाज में, दादाजी आप साफ साफ बताएंगे मैंने उस लड़की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी आखिरकार कब और कैसे ले ली, मुझे सच चाहिए अभी। दादाजी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो धीरे धीरे अरमान के सामने आकर बेहद आहिस्ता से बोले, अरमान तुझे याद है जब तू अमरेश रायचंद को खत्म करने के लिए गया था और वसुंधरा और वीर को तूने अपना नौकर बनाया था, उसी वक्त उसके एक आदमी ने तुम पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन वक्त रहते आस्था बेटी ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी। और जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था वो आस्था बेटी का पति था, जो उस वक्त तुम्हारे डर की वजह से ये शहर छोड़कर भाग गया था। क्योंकि आस्था बेटी ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुमने आस्था और उसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। तुमने कसम खाई थी कि जब तक आस्था बेटी का पति लौटकर नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारे ही घर में रहेगी। उस वक्त तुमने उनकी जिम्मेदारी ली थी। ये सुनकर अरमान की आंखें अगले ही पल शॉक से फैल गईं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। वहीं आहान, जो आश्चर्य से दादाजी की बातें सुन रहा था, वो तुरंत ध्रुव के कान में फुसफुसाया धीरे से, ध्रुव देखा तूने, दादाजी तो कितने बड़े ड्रामेबाज निकले यार, क्या एक्टिंग करते हैं, मार डालेंगे हमें भी, सच में ये तो वाकई हमारे दादाजी हैं। अब मन ही मन ध्रुव भी समझ गया था कि आहन क्या सोच रहा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आई हंसी को दबाया और थोड़ा गंभीर होकर सीधा खड़ा हो गया। दादाजी ने सिर झुकाते हुए गंभीर स्वर में आगे बताया, हाँ बेटा, उस रात तूने आस्था और उसके बेटे अंश की जिम्मेदारी ली थी। आस्था को उसके पति के भागने के बाद ठिकाना चाहिए था, सहारा चाहिए था, और तूने बिना सोचे समझे उन्हें अपने सिंघानिया मेंशन में जगह दे दी थी। उसके बाद तूने मेरे सामने शपथ ली थी, इन दोनों की जिम्मेदारी अब मेरी है। अरमान का सीना तेजी से उठने गिरने लगा, उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव थे। दादाजी ने बात आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने उस वक्त ये भी कहा था कि आस्था और अंश अब तेरे संरक्षण में रहेंगे। उसी दिन से आस्था इस घर का हिस्सा बन गई। बाद में जब नानी माँ ने आस्था को देखा तो उनका दिल पिघल गया, उन्होंने आस्था को अपनी चौथी बेटी मान लिया, और तूने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया, और वहीं से आस्था ने इस घर की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। बेटा तू याद कर, इस पूरे मेंशन में तेरे कामकाज से लेकर हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी आस्था बिटिया ही संभालती रही। वो सिर्फ केयरटेकर नहीं थी, वो इस घर की रूह बन चुकी थी। फिर दादाजी कुछ पल रुके और फिर सीरियस एक्सप्रेशन से बोले, क्योंकि वो बहुत खुददार लड़की थी इसलिए उसने तुम्हारे घर में रहने के लिए सिर्फ एक शर्त मानी थी कि वो यहाँ फ्री में नहीं रहेगी, बदले में वो इस घर का छोटे मोटे काम और तुम्हारे सारे काम संभालेगी। तूने भी उसकी खुददारी को देखते हुए उसे अपने सारे काम करने की इजाज़त दे दी थी। दादाजी के ये मुंह से ये शब्द सुनकर एक पल के लिए अरमान की सांसें भारी हो गई। वो कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों से ताकत ही निकल गई हो। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, भला अरमान सिंघानिया डेविल किंग ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक मामूली लड़की को न सिर्फ अपने घर में ले आया बल्कि अपने पर्सनल कामकाज की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी। अनबिलीवेबल। अरमान को लगता था कि वो इतना भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकता, औरतों पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सामने खड़े लोग, दादाजी, सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान, यहाँ तक कि टाइगर, ये सब वही थे जिन पर अरमान आंखें बंद करके यकीन करता था। और अगर वो सब ये कह रहे थे तो इसका मतलब साफ था, वाकई अरमान ही आस्था और अंश को इस घर में लेकर आया था। अरमान ने आह भरी और उन सब की तरफ अविश्वास से देखते हुए बेचैन होकर, आप सब लोग जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी ध्रुव एकदम से, भाई हम आपको अकेले तो छोड़ देंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना है, क्योंकि जिसने भी आपके साथ ये हरकत की है उसने इस बात का पूरा इंतजाम किया है कि अगर आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे तो इसका बहुत बुरा असर होगा। इतना ही नहीं, इससे आपकी जान भी जा सकती है। किसी ने आपकी जान जाने के लिए ही ये खेल रचा है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके गुनहगारों को ढूंढ निकालेंगे। ध्रुव की चेतावनी सुनकर अरमान ने केवल हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि वो आस्था और अंश या बाकी किसी के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकता था। सच्चाई जानकर अरमान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब अरमान के पास अपने घर वालों की बताई हुई बातों पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और सीधा मिनी हॉस्पिटल के बेड पर एक बार फिर लेट गया। लेकिन जिस तरह से आस्था ने उस पर हाथ उठाया था, ये बात उसकी आंखों के सामने बार बार उभरने लगी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। फिर उसे दादाजी की खुददारी वाली लाइन याद आई। उसने शांत मन से सोचा, अगर मैंने उसे इस घर में रहने की इजाज़त दी है और ये वाकई में खुददार लड़की है, तो जब मैं नानी माँ और बाकी सबको घर से निकाल रहा था, तब ये बात उसे बुरी लग गई होंगी और शायद इसलिए उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। लेकिन फिर भी भला एक मामूली लड़की को इस तरह से द ग्रेट अरमान सिंघानिया पर हाथ उठाने का क्या हक है? अरमान सिंघानिया पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यही सोचते सोचते अरमान अपने अलग ही प्लान बनाने लगा था और दवाई के असर से कब उसकी आंखें फिर से लग गईं उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर सबके सब एक साथ इस मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। टाइगर को उन्होंने मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर दिया था ताकि अरमान के होश में आते ही वो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दे। आस्था सबके साथ खड़ी होकर हैरानी से सबकी ओर देख रही थी। फ्लैशबैक। फिलहाल अरमान के बेहोश होने पर सबको यही ख्याल आया कि अरमान के सामने आस्था को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और तभी सबने मिलकर फैसला किया कि उन्हें कोई ना कोई एहसान अरमान के कंधों पर रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है अरमान आस्था को बिल्कुल भी यहाँ रुकने ना दे। इसी वजह से उन्होंने जल्दी ही अमरेश रायचंद को मारने वाली कहानी बना ली और आस्था को विक्टिम के रूप में खड़ा कर दिया। वली आस्था, जो अपने पति के सीने से लगकर ढेर सारी बातें करना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ भी हुआ था एक एक करके सारी बातें उससे शेयर करना चाहती थी, अब उसकी वो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वक्त वो खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वहीं ध्रुव भी वहां खड़ा था, जो काफी उदास लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सिर्फ अंश पर ही जाकर टिक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश के साथ वक्त बिताए या फिर आस्था को संभाले। उसने सोचा, आस्था को संभालने के लिए इतने लोग मौजूद हैं, मुझे सबसे पहले जाकर अंश को अपनी गोद में ले लेना चाहिए। ये सोचते हुए ध्रुव तुरंत अंश की ओर बढ़ा। वहीं दूसरी ओर ठीक उसी वक्त आहान भी वहीं खड़ा था और वो भी अंश को गोद में लेने के लिए बेचैन हो रहा था, और इत्तेफाक से दोनों लगभग एक साथ अंश पर लपके और फटाफट अंश को उठा लिया। ये देखकर अगले ही पल आहान के माथा से कुड़ गया। आहान गुस्से से चिढ़कर, ये क्या कर रहा है तू? मैंने सबसे पहले अंश को अकेले देखा था, वैसे भी सब लोग आस्था भाभी को संभाल रहे हैं, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी जाकर उन्हें संभाल, मैं तब तक अंश से थोड़ी बहुत बातें कर लेता।
और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें मुझे उससे पूछनी थी, क्योंकि मैंने उसे स्पेशली कहा था कि वहां से आने के बाद सब कुछ मुझे अच्छे से बताना। आहान की बात सुनकर अगले ही सेकंड ध्रुव ने अपनी आईब्रो चढ़ाई और आहान पर भड़क उठा। ओ शट अप यार, अपनी फालतू बकवास बंद कर। अगर तूने उसे कहा था सब बताने के लिए, तो मैं भी उसका चाचा हूँ। मैंने भी उससे कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे बताना, तो पहले मुझे सुनने दे, ओके? अभी तो मैं अंश को खिलाऊंगा, बाद में तू ले लेना, ठीक है? और हाँ, मैं तो कहता हूँ तू जाकर भाभी को ही संभाल, हो सकता है तेरी कार्टून जैसी बातें सुनकर उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, तो प्लीज अब तू मेरे मामले में मत पड़। उन दोनों की लड़ाई में बेचारा अंश अपने छोटे छोटे हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगा। ओ गॉड, ये डेविल डैडी के चक्कर में ये दोनों डेविल चाचू, ये तो मुझे आज बक बक करके मार डालेंगे। क्या इन्हें नहीं पता कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ? ये इतनी तेज आवाज में चिल्लाकर बातें क्यों कर रहे हैं? इससे मेरे कानों पर असर पड़ सकता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बस आपस की पड़ी है, कोई तीसरा आए और मुझे इन दोनों से बचा ले, क्योंकि इनके झगड़े की फ्रस्ट्रेशन झेलने की हिम्मत मुझे में बिल्कुल भी नहीं है। अंश यही सोचते सोचते अचानक जोर जोर से रोने लगा। अब तक जो लोग आस्था के पास बैठे उसे तसल्ली दे रहे थे, उसका मन शांत कर रहे थे, वो सब अंश के रोने की आवाज सुनकर अगले ही पल उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने परेशान होकर उस ओर देखा, क्योंकि अंश को आधा ध्रुव ने पकड़ रखा था और आधा आहान ने, और दोनों अब भी अंश को लेकर आपस में खींचतानी कर रहे थे। कभी ध्रुव उसे अपनी ओर लेने के लिए खींच रहा था, तो कभी आहान उसे अपनी ओर लेने के लिए बार बार खींच रहा था। ये नज़ारा देखकर पल के लिए तब सब लोग दंग रह गए थे और उन्होंने एक साथ अपने सिर पर हाथ मार लिया, क्योंकि ये दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया था। तभी नानी माँ जल्दी से उन दोनों के पास चली आईं। नानी माँ झुंझलाकर, अरे बिटवा, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं और तुम दोनों का बचपना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाओ अंश बिटवा, हमें दो, हमने भी कब से इसके साथ बातें नहीं की हैं। थोड़ी देर हम बच्चे के साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे दिल और दिमाग पर दामाद जी की याददाश्त जाने का जो गहरा असर हुआ है वो थोड़ा जरूर कम हो जाएगा, तो इसलिए अंश बिटवा को हमें दे दो। नानी माँ की बात सुनकर ध्रुव और आहान आंखें फाड़कर उनकी ओर देखते हुए नामे सिर हिलाने लगे। ध्रुव जल्दी से, बिल्कुल नहीं नानी माँ, हम लोग भी अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर खड़े हुए हैं, अगर आपको उससे बातें करनी है या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो पहले आप लाइन लगाइए नानी माँ। देख लीजिए, अब इस मामले को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। मैं बहुत सख्त हूँ नानी माँ, और सबसे पहले अंश से बातें मैं ही करूँगा। अब नानी माँ ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और एकदम से मुँह बनाते हुए उन्हें टोका। नानी माँ नाराज होकर, अरे बिटवा, हमें भी तो उसके साथ थोड़ी बातें करने दो ना। जब से तुम दोनों आए हो बच्चा रो ही रहा है, और अभी तो वो रो दिया तुम्हारी लड़ाई देखकर। तो तुम इसे मुझे दो, हमें इससे बातें करने दो। आस्था ये सब देख तो रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग पूरी तरह अरमान के ख्यालों में डूबा हुआ था। अब नानी माँ को भी वहां जाकर अंश के लिए लड़ते देखकर आकाश, सुमित, रश्मि, वंशिका और रौनक सब वहां आ पहुंचे और आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। फिर अचानक आकाश आगे बढ़ा और अंश को भी अपनी गोद में ले लिया। आकाश एकदम से, मुझे लगता है कि अंश के साथ मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी मैं काफी परेशान हो चुका हूँ, तो थोड़ी देर उससे बातें कर लूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन सुमित ने देर ना करते हुए आकाश की गोद से अंश को झपट लिया। सुमित बहाना बनाते हुए, नहीं, मुझे लगता है कि अंश के साथ ज्यादा टाइम मुझे स्पेंड करना चाहिए। तुमने देखा नहीं किस तरह से मैं अपनी बीवी से दूर रह रहा हूँ? मैं अगर थोड़ी देर उसके साथ वक्त बिताऊंगा तो मेरा दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तभी राधिका और वंशिका ने एक दूसरे को चुपके से देखा और फटाफट सुमित की गोद से अंश को छीन लिया। राधिका एक्साइटेड होते हुए, देखो आप सब लोग चाहे जो करें, लेकिन सबसे ज्यादा बातें हम ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल हमारा दुखा है, सबसे ज्यादा परेशान हम हुए हैं, और अब हमारा इकलौता सहारा यही है। अब हम अंश से ढेर सारी बातें करेंगे, है ना अंश? ये सब देखकर बेचारा अंश मन ही मन परेशान होकर सोचने लगा, अरे मेरी माँ, इन लोगों को कोई डराओ, मुझे बचाओ, कोई है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये सब लोग मुझे फुटबॉल की तरह एक दूसरे के साथ पास पास करना शुरू ना कर दें, बस अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी, कोई तो मुझे इनसे बचाए। लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया, बल्कि हर कोई उसे अपनी गोद में लेने को आतुर था। सब चाहते थे कि वो अंश को लेकर अपनी अपनी मन की भड़ास शांत करें। तब तक रौनक और रश्मि ने भी अंश को फटाफट अपनी गोद में ले लिया था। रौनक बेपरवाह अंदाज में, देखो जब से ये आया है हम इसे ठीक से मिल भी नहीं पाए हैं, अब अंश को थोड़ी देर हम रखेंगे। रश्मि मायूस होकर, और वैसे भी अरमान ने आज राखी के वक्त जो हरकत की है वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अंश के साथ टाइम चाहिए। अब बेचारे अंश को लगने लगा कि आज तो सबके सब घर वाले उसे अपना फेवरेट फुटबॉल बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था।